बजाएंगे।
जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरावन चारि, यमुना यमुना तीरावन चारि, यमुना राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम, जय सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम, जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम, जय सीताराम जय सीताराम सीताराम जय लक्ष्मण हनुमान, जय सीताराम जय सीताराम सीताराम जय लक्ष्मण हनुमान, जय सीताराम जय सीताराम जय लक्ष्मण हनुमान, जय सीताराम जय सीताराम जय लक्ष्मण हनुमान, जय गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय, जय प्रभु प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि हरि बोल 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 श्री श्री रामनाथ स्वामी भगवान की श्री श्री रंगनाथ स्वामी भगवान की श्री रामेश्वरम धाम की निताय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरांगा निताय निताय गौर प्रेमानंद हरि तो धन्यवाद देना चाहेंगे इंद्रेस माधवपुत्र प्रभु जी का उन्होंने इतना सुंदर यात्रा ऑर्गेनाइज की और हम सबसे ज़्यादा धन्यवाद देना चाहेंगे हिज ग्रेस मुरारी चैतन्य प्रभु जी का क्योंकि उनके कारण हम जो दिव्य देशों के दर्शन कर पाए हैं और बहुत ही सौभाग्य से इन देशों के दर्शन होते हैं कहते हैं ब्रह्मांड भ्रमित कौन है भाग्यवान जी गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज तो ये बीज की उत्पत्ति इन इन दिव्य देशों का दर्शन करने से प्राप्त होती है बाद में श्रवण कीर्तन कर जला सिंचन श्रवण कीर्तन करने से हम उस बीज को आरोपित बीज को क्या कर सकते हैं वृक्ष बना सकते हैं पौधा बना सकते हैं लता बना सकते हैं लेकिन उसके बीज की प्राप्ति कैसे होती है इन धामों के दर्शन करके साधुओं का संग करके तो प्रभु जी का धन्यवाद देना चाहेंगे माधवपुत्र प्रभु और मुरारी चेतन प्रभु जी का कि उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से इस यात्रा को ऑर्गेनाइज किया है और आप सभी भक्तों का धन्यवाद देना चाहेंगे जो सब लोग कोऑपरेशन से चल रहे हैं सब लोग साथ साथ में भक्तों की यही नीति है कि सब लोगों को साथ में रहना चाहिए श्रील प्रभुपाद चाहते हैं कि एक फैमिली है इस फैमिली में किसी को किसी से द्वेष नहीं होना चाहिए किसी को किसी से परेशानी नहीं होना चाहिए जैसे गृहस्थ जीवन होता है कभी पुत्र करताल बजाता है और जो घर का मालिक होता है जो प्रभु जी होते हैं वो क्या करते हैं कीर्तन करते हैं किसी दिन माता जी कीर्तन करती हैं प्रभु जी करताल बजाते हैं बच्चा आरती करता है उसी प्रकार से ये भी ग्रस्त परिवार है तो मेरी कोई योग्यता नहीं है जो कि मैं यहाँ पर प्रवचन दूँ ना ही मैं कोई बहुत बड़ा संत हूँ लेकिन ये क्या है कि ये नीति है कि हमारा क्या शुद्धिकरण होता है जब भगवान का गुणगान करते हैं तो वैसे तो बहुत सारे वरिष्ठ भक्त हैं यहाँ पर दयालु गोविंद प्रभु जी हैं गौर प्रिय प्रभु वासुदेव प्रभु जी हैं तो सब लोग बोल सकते हैं भगवान के बारे में लेकिन भगवान ने मौका दिया प्रभु जी के द्वारा कि मैं अपने शुद्धिकरण के लिए बोल सकूं तो प्रयास करेंगे कुछ लीलाओं का यहाँ पर वर्णन करने के लिए मेरे से कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करिएगा हरे कृष्णा तो हम लोगों ने काफ़ी मुख्य चीज़ों के दर्शन किए सबसे पहले दिन हमने रंगनाथ भगवान के दर्शन किए और रंगनाथ श्री रंगम क्षेत्र के दर्शन किए उसमें तीन द्वार हैं लेकिन कई भक्तों का ये फीडबैक था कि दो द्वारों के दर्शन नहीं हुए क्योंकि वो द्वार बंद थे और भगवान रंगनाथ के कई बहुत महान भक्त हुए हैं श्री रामानुजा संप्रदाय के अंदर जिनका वर्णन आज हम कर सकते हैं कि बहुत दिन से भक्त चाह रहे थे कि उनका वर्णन हो लेकिन हो नहीं पा रहा था तो सबसे पहले जहाँ इस धाम में है रामेश्वरम धाम वो आज हमने सुना उसकी लीला के बारे में धनुषकोडी में कि क्यों वो लीला हुई लेकिन उस लीला से क्या शिक्षाएं मिलती हैं वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद कुछ महान आचार्य जो हुए हैं श्री रामानुजा संप्रदाय में उनके उनकी भक्ति के बारे में थोड़ा वर्णन करेंगे ज़्यादा समय नहीं लेंगे बस 30-35 मिनट आधा घंटे के करीब हम लोग चर्चा करेंगे इस पर तो सबसे पहले बताते हैं कि जिस प्रकार से हमारे शरीर में एक चीज़ विराजमान है जिसके चले जाने से ये शरीर मृत माना जाता है वो क्या वस्तु है हाँ
आत्मा
तो आत्मा जो ये वस्तु है अगर एक शरीर से निकल जाए तो क्या होता है वो व्यक्ति मृत हो जाता है लेकिन ये आत्मा है हम मानने को तैयार नहीं हम कौन हम क्या मानते हैं हम कौन है शरीर है कि आत्मा है हाँ मानते हैं आत्मा है, तो प्रसाद पे लड़ाई क्यों होती है? कम हो गया दादा, हो गया। हम लोग क्या मानते हैं, हम कौन है? शरीर है। हाँ सच्चा बोलना चाहिए ना भक्त को, हम तो मानते हैं हम लोग शरीर है, तभी तो हम इतना सारी चीजें करते हैं अपने शरीर के पालन पोषण के लिए, है ना। हम आत्मा नहीं मानते हैं, क्या मानते हैं? शरीर मानते हैं अपने आप को। तो बहुत सुंदर एक प्रवचन में हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज बता रहे थे कि जो शरीर है ये किस प्रकार से है, जिस प्रकार से लंका, क्या है, हाँ श्रीलंका भी हमने देखा ना, श्रीलंका में भगवान की एक लीला हुई, क्या लीला हुई कि रावण ने क्या उठाया, सीता जी को उठा लिया, लक्ष्मी जी को उठा लिया, कहाँ से उठा लिया, नारायण से उठा लिया, और कहाँ ले गए, अपने लंका में ले गए, सोने की लंका में। तो उसी प्रकार से हम भी क्या करते हैं कि ये जो जीव आत्मा है ये सदा कहाँ विराजमान थी, भगवान के धाम में विराजमान थी, क्या कर रही थी, सदा भगवान की सेवा कर रही थी, लेकिन हमने क्या किया, हमने भगवान से विरोधाभास किया कि हम भी क्या चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, तुम ही हो क्या स्वामी, हम भी स्वामी बनना चाहते हैं, हम भी बॉस बनना चाहते हैं, हम भी मालिक बनना चाहते हैं, जिसके कारण हम कहाँ आ गए, इस मृत्यु लोक में आ गए, इस पृथ्वी लोक में आ गए, है ना, और किस शरीर में, इस ट्रैप हो गए इस शरीर के अंदर। तो महाराज एक्सप्लेन करते हैं कि जो बॉडी है ये किस प्रकार से लंका के समान है, और ये आत्मा कैसे है, सीता जी के समान है, है ना, और रावण कौन है, हमारा मस्तिष्क है, जो क्या करता है, जिसके कारण इस शरीर में लंका में कौन ट्रैप हो जाता है, सीता जी ट्रैप हो जाती है। तो अभी निकालने का रास्ता क्या है, कौन निकाल सकता है, हाँ हाँ हरि नाम और भगवान के भक्त, है ना। हरि नाम आपको किसने प्रदान किया, भगवान के भक्तों ने दिया, जो आचार्यगण है वो कौन है, भगवान के प्रतिनिधि हैं। तो इसी प्रकार से भगवान के एक प्रतिनिधि थे जो कहाँ गए, लंका में, पूछने के लिए कि सीता मैया कहाँ पर है, कौन गए थे, हनुमान जी। तो एक पर्वत है, आज जो हमने दर्शन किए इसमें अनेकों तीर्थ हैं, 24 तीर्थ है रामनाथ स्वामी मंदिर के अंदर, इसमें अनेक अनेक कॉर्नर पर भगवान के अनेक अनेक लीलाएं हुई हैं, जिसमें से एक गंधमर्दन पर्वत आता है जिसका वर्णन कई जगह बताते हैं कि वो लंका में है, कुछ लोग बोलते हैं कि उड़ीसा में आता है, कुछ लोग बोलते हैं गंधमर्दन पर्वत मंदिर के अंदर ही, सीमा प्रांगण के अंदर सिर्फ आधा किलोमीटर अंदर चलेंगे तो गंधमर्दन पर्वत का तीर्थ आता है, गंधमर्दन तीर्थ बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि वो यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, तो एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, लेकिन वो हिल था जहाँ से हनुमान जी ने क्या किया, सबसे पहली बार जंप किया था, कहाँ के लिए, लंका के लिए, है ना। तो लोग बोलते हैं हनुमान जी उड़ के गए, हनुमान जी उड़ के नहीं गए हैं, हनुमान जी कैसे गए हैं, जंप करके गए हैं यहाँ से, कि वो गंधमर्दन पर्वत पर चढ़ गए हैं, और चढ़ने के बाद क्या बोले, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, और फिर तुरंत एक बार में कहाँ पहुंच गए, लंका पहुंच गए, है ना। क्या करने पहुंचे, सीता जी को खोजने पहुंचे। तो इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी कौन आए, श्रील प्रभुपाद आए, कौन आए, श्रील प्रभुपाद, क्या करने आए, हमारे शरीर में जो ये आत्मा बंद हो गई है, बंद हो गई है इस लंका में सीता मैया, उसको कहाँ ले जाने आए, इस शरीर से निकाल कर वापिस नारायण की सेवा में लगाने के लिए, कृष्ण की सेवा में लगाने के लिए कौन आए, श्रील प्रभुपाद आए, और क्या दिया है उन्होंने हमको, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जिस प्रकार से बताते हैं कि लंक जो रावण रहते थे वो दशानन थे, दशानन मतलब जिनके 10 सर थे, है ना, और दशानन, उसी प्रकार से हमारा शरीर भी दशानन है। अभी आप बोलेंगे प्रभु जी हमारा तो एक ही मुख है, तो दशानन कैसे हुए, तो बताते हैं 5 हमारी कर्मेंद्रियां और 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां, जो ज्ञानेंद्रियां हैं और जो 5 कर्मेंद्रियां, ये दशानन के तरीके से क्या करती हैं, इस आत्मा को इस लंका के अंदर बंद करके रख देती हैं। तो हमें कैसे अपने जीवन में इससे छुटकारा पाना चाहिए, तो एक ही रास्ता है कि हम भक्तों की शरण ग्रहण करें, जिस प्रकार से हनुमान जी की बात सीता मैया ने मानी और उसके कारण वो वापस किससे मिल पाई, नारायण रामचंद्र भगवान से वापस मिल पाई। तो जो भगवान राम है उन तक जाने का सरल रास्ता यही है कि हम श्रील प्रभुपाद जी के संग में, भक्तों के संग में रहे। कहते हैं साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। लव मात्र साधु का संग अगर करें तो क्या होगा, हमारी सिद्धि प्राप्त होगी। लेकिन हमारे में से काफी सारे भक्त हैं जो कि इतने सालों से इस्कॉन से जुड़े हैं, आप में से कभी लोग इस्कॉन फूडली फाउंडेशन मिड डे मील में सेवा करते हैं, लेकिन उनका सरेंडर उतना नहीं हो पाया है, मेरा भी नहीं हो पाया है, हम सबका मतलब कहने के वही टारगेट है। तो क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि अभी तक हमने साधु संघ को समझा नहीं है, एग्जैक्ट साधु संघ है क्या, श्रील प्रभुपाद के शास्त्रों का अध्ययन, हम यहाँ पर आए हैं इस क्षेत्र में तो खाली प्रसाद खाने नहीं आए, हम यहाँ पर खाली घूमने फिरने नहीं आए, पिकनिक स्पॉट बनाने नहीं आए, हम यहाँ पर क्यों आए हैं, भगवान के जो धाम है उसको सही रूप से अपने जीवन में उससे शिक्षाएं ग्रहण कर सके, है ना। इसी प्रकार से जब हनुमान जी उस गंधमर्दन पर्वत से जंप मारते हैं तो सबसे पहले उनके सामने एक स्वर्ण स्वर्ण पर्वत आता है, स्वर्णगिरी बोलते हैं उसको, है ना। तो स्वर्णगिरी जब आता है तो हनुमान जी को जाने नहीं देता है, जंप करते में क्या कहता है, मैं तुमको रोक लूंगा। तो वो बहुत ही विशाल पर्वत बताते हैं, आपने आज समुद्र का दर्शन किया धनुषकोटी में, कितना विशाल है ना, बहुत ही बड़ा। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि बीरबल तुम्हारे, मैं एक समझना चाहता हूँ, तुम बोलते हो हमारे भगवान बहुत महान है, हमारे भगवान महान है, लेकिन हमारे यहाँ भी बोलते हैं, हमारी जो मुस्लिम लैंग्वेज है उसमें बोलते हैं खुदा की खुदाई, है ना, बोलते हैं ना खुदा की खुदाई तो देखो, खुदा की खुदाई तो देखो, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। तो उसका मतलब है कि इसका मतलब क्या होता है। तो बीरबल बोले ठीक है मैं इसका उत्तर दूंगा, और ले जाकर कहाँ खड़े कर दिए, समुद्र के किनारे, और बोले कि देखिए महाराज खुदा की खुदाई। बोले मैं समझा नहीं। बोले देखिए ना तो आपके पिताजी ने खोदा है ना मेरे पिताजी ने खोदा है, है ना, कितना पानी भरा हुआ है ये तो खुदा ही खोद सकता है, इतना बड़ा उसमें जल संग्रह कर दिया इतना सारा। तो इसको देखकर हम समझ सकते हैं कि भगवान कितने विशाल विशाल कार्य किए हैं, उसके बाद भी जो असुर प्रवृत्ति का है उसको भगवान का दर्शन नहीं होगा, है ना। तो जब हनुमान जी जंप मारते हैं उस विशाल समुद्र के ऊपर तो सबसे पहले स्वर्ण, कैसे, स्वर्ण माउंटेन, स्वर्ण गिरी, गोल्डन माउंटेन सामने आता है। और जब आता है तो हनुमान जी रुकते नहीं है, वो अपनी हवा में, क्योंकि वो पवन पुत्र हैं, तो और ऊंचा हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से भक्त के जीवन में भी धाम यात्रा करने में या फिर अपनी नॉर्मल सेवाएं करने में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आते हैं, लेकिन उसको क्या करना चाहिए, उन ऑब्स्टेकल्स को क्या समझना चाहिए, स्टेपिंग स्टोन, आगे बढ़ने का रास्ता समझना चाहिए। ये नहीं समझना चाहिए कि अरे अब तो ऑब्स्टेकल आ गया, प्रभु जी हम तो पहले कर पाते थे लेकिन अब ये प्रॉब्लम आ गई, अब हम नहीं कर सकते हैं। येन केन प्रकारेन मनः कृष्ण निवेश्यः, अगर हम बहुत भगवान का सरेंडर करेंगे तो कोई बड़े से बड़ा ऑब्स्टेकल हमको भक्ति से रोक नहीं सकता है, है ना। तो हमको ये सीखना चाहिए हनुमान जी जैसे भक्तों से, हनुमान जी जैसे सेवकों से। और वो इतना बड़े भक्त होने के बाद भी कैसे बैठते हैं, हाथ जोड़कर विनम्रता से बैठते हैं, कहाँ, सीताराम लक्ष्मण के विग्रह के नीचे, कभी देखा साथ में सीट डाल दी सीताराम लक्ष्मण के, हमेशा विनम्रता से नीचे बैठते हैं। तो हमको वही सीखना चाहिए, कभी ईगो है ना, प्राइड ये नहीं आना चाहिए, मैं तो ये हो गया हूँ, भक्त हो गया हूँ, मैं तो ये हो गया हूँ, ऐसा हो गया हूँ, वैसा हो गया हूँ। हनुमान जी से ये शिक्षाएं हमें ग्रहण करनी चाहिए। और वो इतना बड़ा ऑब्स्टेकल आने के बाद भी क्या किए, जंप कर गए उसको ऊंचा और ऊपर। मतलब अगर हमारे जीवन में ये ऑब्स्टेकल आ गया तो उसके ऊपर पैर रखकर और एक नया कार्य करने के लिए भक्ति में आगे चलना चाहिए। ये नहीं कि आ गया तो अब छोड़ दिया। उसके बाद जब हनुमान जी आगे जाते हैं तो बताया गया है कि एक असुर आता है, उसका नाम क्या था, सुरसा, सुरसा राक्षसी। क्या करती थी वो, कौन बताएगा? नहीं नहीं सुरसा राक्षसी बीच में आती है समुद्र में, जब भगवान जंप कर रहे हैं, हनुमान जी जंप कर रहे हैं, तो वो क्या करती है, अपना मुख खोलती है, कैसे कर देती है, बड़ा कर देती है, 20 योजन बताया गया है ना, 20 योजन बड़ा मुख खोल देती है और कहती है तुमको मेरे मुख के अंदर आना ही पड़ेगा, है ना। तो हनुमान जी क्या करते हैं, अपना साइज विशाल कर देते हैं, है ना। ऐसे ही आचार्यगण जो होते हैं वो दिखने में छोटे लगते हैं लेकिन अपना साइज विशाल कर देते हैं। शिला प्रभुपाद जब हिंदुस्तान से अमेरिका जा रहे हैं तो कितने रुपए लेके जा रहे हैं, 40 रुपए। और जब ऑब्स्टेकल्स बढ़ रहे हैं, असुरगण बढ़ रहे हैं संसार में, तो अपना साइज कितना विशाल कर दिए, है ना, $1 million का इस्कॉन केंद्र बना दिए, एक भी मंदिर नहीं था, 108 मंदिर केंद्र खोल दिए, है ना। तो ये आचार्य जो होते हैं शिला प्रभुपाद हनुमान जी के रिप्रेजेंटेटिव, ये क्या करते हैं, जब ऑब्स्टेकल आता है, राक्षस असुर आते हैं, तो अपना साइज विशाल कर लेते हैं, हमें देखने में लगेगा साधारण मनुष्य है। इसीलिए हमारे नाम अपराध में बताते हैं, जो हम नाम जप करते हैं उसमें अपराध में एक अपराध है कि गुरु को साधारण मनुष्य समझना, आचार्य गणों को साधारण मनुष्य समझना, उनको उनका एक्सपेंशन देखेंगे तो हम सोच भी नहीं सकते वो कितने विशाल हो सकते हैं। ऐसे हनुमान जी अपना साइज बढ़ाते रहे, 20 योजन, फिर 30 योजन उसने मुख खोला तो 30 योजन बढ़ा लिया, आखिर में उसने अपना मुख कर दिया 100 योजन, इतना बड़ा मुख खोल दिया, और फिर उसमें हनुमान जी ने भी अपना साइज क्या कर दिया, 100 योजन। तो इसी प्रकार से क्या होगा, बहुत सारे लोग हमारे को हमारी भक्ति को खाने के लिए आएंगे, अरे क्या रखा है भक्ति में, कहाँ जा रहे हो, धाम में, चलो चलो आइसक्रीम खाएंगे, घूमेंगे धाम में, आइसक्रीम खाने आए हैं। अरे हम आइसक्रीम खा सकते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन हमारी कॉन्शियसनेस कैसी होनी चाहिए, भगवान की सेवा करने की होनी चाहिए, भक्तों का संग करने की होनी चाहिए, कथा श्रवण करने की होनी चाहिए। अपने रूम में जाकर रेस्ट करने के साथ साथ हम भगवान के नामों का जप कर सकते हैं, रीडिंग कर सकते हैं, भगवान की कथाओं का श्रवण कर सकते हैं, तो आनंद मिलेगा हम लोगों को। लेकिन ऐसे हमारा प्रोसेस अगर नहीं है तो फिर हमारे लिए क्या है, सुरसा राक्षसी हमारे सामने विराजमान है। तो फिर भगवान ने क्या किया, हनुमान जी ने जब इतना बड़ा मुख खोल लिया तो भगवान हनुमान ने क्या किया, छोटे हो गए। तो इसी प्रकार से जब कोई विशाल कोई व्यक्ति आपसे बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा करने लगे ना, अरे प्रभु तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम कैसे हो, ठीक है, तुम ही ये हो, तुम ही वो हो, तो सब क्या बन जाना चाहिए? हनुमान जी सिखा रहे हैं, इनसिग्निफिकेंट, बहुत छोटा हो जाना चाहिए। तब क्या होगा, छोटे होने से आप सुरसा जैसी राक्षसी जिसका 100 योजन साइज है उसके भी मुख को पार करके आराम से कहाँ जा सकते हो, सीता मैया से मिलने जा सकते हो, भगवान राम की सेवा में जा सकते हो। तो इसलिए इनसिग्निफिकेंट, अपने आप को बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट समझे। कोई व्यक्ति अगर बोले भी, अरे प्रभु जी आप ऐसे ऐसे, हाँ ठीक है हरे कृष्णा ऐसे बोल के आगे काम चलना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद जब आगे जाते हैं तो एक और राक्षस आता है, उसका नाम है सिम्हा, है ना, सिमका राक्षस। वो क्या करता था कि परछाई को पकड़ कर नीचे खींच लेता था और फिर क्या कर लेता था, उसको भोजन भक्षण कर लेता था। कोई भी कौवा, कोई भी चिड़िया, कोई भी पक्षी ऊपर से जाए तो क्या करता था, उसकी परछाई को ऐसे पकड़ता था, खींचता था और फिर उसको भक्षण कर लेता था। तो इसी प्रकार से क्या हुआ, जब हनुमान जी ऊपर से जा रहे थे, उसने देखा तो क्या किए, उसका भक्षण कर लिए। कैसे कर लिए, हनुमान जी को खींचा और फिर अपने मुख में रख लिए, है ना। इसी प्रकार से जो ये असुर है, ये किस चीज का प्रतिनिधि है, बताते हैं कि हमारे जीवन में हम भी जब दूसरों के नेगेटिव्स को देखते हैं, उनकी कमियों को देखते हैं, बहुत सारी, है ना, ये सिर्फ आपके लिए नहीं, मेरे लिए भी है, मैं सिर्फ डिस्कस कर रहा हूँ, है ना। तो जब हम दूसरों की कमियों को देखते हैं तो क्या होता है कि वो कमियां हमारी हो जाती हैं। हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज बताते हैं अपने प्रवचनों के दौरान कि अगर मान लीजिए आपके हाथ से आपके पॉकेट में 10 रुपया है, अगर आपकी पॉकेट में 10 रुपया है और वो 10 रुपया गिर गया और पीछे से कोई भक्त आ रहा है उसने उठा लिया, तो वो 10 रुपया भी किसका हो गया, हाँ, जो उठाया है उसका। इसी प्रकार से किसी व्यक्ति का अवगुण अगर हम बहुत बार नोटिस करेंगे, अरे प्रोजी इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये है, तो वो किसके हो जाएंगे, जो नोटिस कर रहा है हमारे हो जाएंगे। तो क्या करना चाहिए, अपने जीवन में हमें हनुमान जी की तरह क्या करना चाहिए, इन सारी चीजों को इग्नोर करना चाहिए। जिस प्रकार से हम अवगुण नोटिस करते हैं, अगर हम गुण नोटिस करेंगे तो किसके हो जाएंगे, हमारे हो जाएंगे। जिस प्रकार से जब मंगला आरती होती है तो उसमें नरसिंह भगवान का पुष्प प्रदान किया जाता है सबको, है ना, देखा, इत्र लगाते हैं हाथों में, हमारे मिड डे मील में भी जब 56 भोग होता है लगाते हैं, सबके हाथों में अगर हम इत्र लगाएंगे, जो व्यक्ति लगा रहा है उस तक पहुंचते पहुंचते उसको खुद को नहीं मिलता, लेकिन उसके सबको पुष्प बांटने से, सबको इत्र बांटने से क्या होता है, उसके हाथ में क्या रह जाती है, खुशबू रह, सुगंध रह जाती है। इसी प्रकार से जो व्यक्ति दूसरों को प्रवचन करेगा, दूसरों को कृष्ण प्रदान करेगा, उसके जीवन में क्या आ जाएगा, कृष्ण आ जाएंगे। इसलिए हमको सदा तत्पर रहना चाहिए, इसलिए नहीं कि हम कोई महान आचार्य या गुरु बनना चाहते हैं। जारे देखे तारे कहे कृष्ण उपदेश, अमार आज्ञा ते गुरु है ये तारे ही देश। तो जिससे मिले जहां भी देखे वहां पर क्या बोले, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और उसके बाद जब हनुमान जी लंका पहुंचते हैं, तो मैं पढ़ रहा था, बहुत ही सुंदर विवरण आता है रामायण के अंदर, अगर आप सुनना चाहें तो आपको बता सकते हैं कि हनुमान भगवान राम की कितनी बड़ी सेना थी बंदरों की, है ना। लोग सोचते हैं कि भगवान राम ने कैसे इतना बड़ा सेतु बना लिया, जो कि कहाँ से, रामेश्वरम धाम से लेकर लंका तक पूरा लंबा रास्ता बना दिया, तो कितनी सेना थी। तो बताते हैं कि भगवान की जो सेना थी वो बताते हैं 100 करोड़ महाओघा, कितनी महाओघा बंदर थे उसके अंदर, 100 करोड़ महाओघा। तो मैं को जब ये मैंने पढ़ा तो मैंने सोचने लगा कि महाओघा क्या होता है, समझ नहीं आ रहा था, तो फिर डिस्क्रिप्शन डिटेल्स ढूंढी तो पता चला कि 1 लाख करोड़, 1 लाख करोड़ तो आप समझते हैं कितना होता है, 1 लाख करोड़ को भाषा, संस्कृत भाषा में एक शंखु बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक शंखु, 1 लाख शंखु को बोलते हैं एक महाशंखु, है ना, 1 लाख महाशंखु को बोलते हैं एक बृंद, है ना, 1 लाख बृंद को बोलते हैं एक पद्म, 1 लाख पद्म को बोलते हैं एक महापद्म, 1 लाख महापद्म को बोलते हैं एक खर्व, 1 लाख खर्व को बोलते हैं एक महाखर्व, 1 लाख महाखर्व को बोलते हैं एक समुद्र, 1 लाख समुद्र को बोलते हैं एक ओघा, और 1 लाख ओघा को बोलते हैं एक महाओघा। और इस प्रकार से भगवान की सेना में 100 करोड़ महाओघा बंदर थे, कितने थे, 100 करोड़ महाओघा। और उसके बाद भी सब क्या बोल रहे थे, जय श्री राम। और हमारे माधापुत प्रभु की सेना में कितने बंदर हैं, हम लोग, हम भी तो बंदर ही है ना, कितने, 40, वो भी मैनेज नहीं हो पा रहे हैं, प्रॉब्लम आ जाती है। तो सोचिए रामचंद्र भगवान का मैनेजमेंट कितना स्ट्रांग है, तो भगवान से कम ये शिक्षा तो ले लें कि बंदर जो है वो सब भगवान की सेवा करना चाहते हैं। भगवान या भगवान के रिप्रेजेंटेटिव या फिर जो सर्वेंट लीडर्स हैं, हमें उनके अथॉरिटी चाहे गलत भी हो हमें उनका पालन करना चाहिए। जो भी कहेंगे हमारे अच्छे के लिए कहेंगे, क्योंकि उनका एकमात्र उद्देश्य क्या है, सबको भगवान की शरण में ले जाना, सबको भगवान की सेवा करना चाहिए। हमने सीखा है, लेकिन क्या सीखा है, बोलते हैं कभी मन इधर कभी मन उधर, है ना, मंकी, हम मन की सुनते हैं ना, कभी मन इधर कभी मन इधर, तो मन की सुनने से हम मन की बन गए हैं, है ना। और मंकी क्या करता है, कभी एक डाल पर कभी दूसरे डाल पर कभी तीसरे डाल पर, तो हमें वो वाला मंकी नहीं बनना है, जंगली मंकी। हमें कौन सा मंकी बनना है, जो भगवान राम की सेवा में लगा हुआ है और क्या कर रहा है, भगवान के लिए बड़े बड़े विशाल पत्थर उठाकर डाल रहा है। लेकिन आप किसी भी बंदर का, हनुमान जी के अलावा, है ना, जो सेना में जो इतने सारे वानर थे जिनका कईयों का तो वहीं पर ही वध हो गया, उनका नाम बता सकते हैं, इनसिग्निफिकेंट, नाम भी नहीं मालूम, फिर भी इतना बड़ा सेतु बना दिए भगवान के लिए। क्यों? बस भगवान की प्रसन्नता। अगर एकमात्र उद्देश्य रहेगा भगवान की प्रसन्नता, तो कभी भी हमारे जीवन में कोई कष्ट नहीं आएगा। कोई भी कार्य करें, कोई बुरा भी बोले, तो सोचना चाहिए तो मेरे भगवान की प्रसन्नता है, मैं इनसिग्निफिकेंट बनने में इस भक्त ने मेरी क्या करी, मदद करी। इसी प्रकार से वर्णन आता है कि एक आचार्य थे जिनका नाम था, मैंने आपको बताया था, पराशर भट्ट, जो कि कुरेश के पुत्र थे। वो ऐसे आचार्य थे कि एक बार वो भगवान अनंत भगवान वरदराज का दर्शन करने गए, और जब दर्शन कर रहे थे तो उनसे कोई व्यक्ति द्वेष करता था, बहुत ज्यादा भक्त, अरे एक कल का बच्चा है मेरे सामने प्रवचन देने लगा, ये बोलेगा ये समझाएगा, ऐसे बोलते थे, उनके बारे में सोचते थे। लेकिन वो अपनी सेवा में लगे रहे, तत्पर रहकर भगवान की सेवा में लगे रहे। तो वो जो भक्त था, जब ये दर्शन करने आए, पराशर भट्ट आपने दर्शन कर रहे थे, तो पीछे से बोलने लगा, ये बोल रहे हैं दर्शन करते मत, बोल रहे हैं भगवान मैं तो आपका तुच्छ दास हूँ। तो पीछे से बोल रहा है सत्यम सत्यम सत्यम, है ना। फिर ये बोले भगवान के आगे जाकर, भगवान लेटे हुए हैं विष्णु रूप में, जो भगवान विराजमान है उनके आगे जाकर बोलते हैं रंगनाथ स्वामी के आगे कि भगवान मैं तो आपका दास बनने योग्य भी नहीं हूँ। तो पीछे से आवाज आती है सत्यम सत्यम सत्यम। फिर वो बोलते हैं मैं तो एक मल में पड़े हुए कीड़े से भी नीचा हूँ। तो पीछे से बोलता है सत्यम सत्यम सत्यम, सच बोल रहा है, आज ये पहली बार अपने बारे में सच बोल रहा है। लोग बोलते हैं ये बहुत शुद्ध भक्त है, ये बहुत बड़ा आचार्य, वो सब झूठ है, और ये सच्चाई क्या है, ये सच बोल रहा है, आज सच बोल रहा है। तो उन्होंने क्या किया, जब इतनी प्रार्थना करके भगवान को प्रणाम करने के लिए झुके, उससे पहले क्या किए, भगवान की जो गार्लैंड उनको दी गई थी, उस गार्लैंड को उन्होंने अपने गले में धारण करने की बजाय उस भक्त को पहना दिया और उसको दंडवत प्रणाम किया भगवान से पहले। तो सारे आचार्य के जो शिष्य थे वो बोले अरे आचार्य आप क्या कर रहे हैं, इनको प्रणाम क्यों कर रहे हैं। कह रहे हैं मैं ठाकुर जी के सामने रोज प्रार्थना करता हूँ कि भगवान मैं आपका तुच्छ दास हूँ, मैं आपका तुच्छ दास हूँ, मुझे मेरे जैसे पतित पे भी क्या करिए, कृपा करिए। लेकिन भगवान क्या है, कभी मानते नहीं है। आज मुझे क्या मिल गया है, विटनेस मिल गया है, एक गवाह मिल गया है, ताकि मेरी ठाकुर जी बात मान लेंगे, है ना। तो हमको इस चीजों से सीखना चाहिए, कोई भी इस प्रकार भी बोले तो हमें ये समझना चाहिए ठीक है ये मेरी ठाकुर जी की शरणागत करने में मदद कर रहा है, द्वेष कर तो अच्छा है मैं क्या करूंगा, शरणागति हो सकूंगा भगवान के चरणों में। तो इस प्रकार से हमें अनेक आचार्यों से सीखना चाहिए। लेकिन बताते हैं शंकराचार्य जो है उन्होंने एक बहुत सुंदर श्लोक में बताया है, बोलते हैं अंगम गलितम, क्या होता है अंगम गलितम, ये शरीर जो है गल जाता है पूरा, है ना, बुढ़ापा आ जाता है जब 70 साल की उम्र होती है, तो ये शरीर की हड्डियां और खाल अलग हो जाती है, अंगम गलितम, है ना, और पलितम मुंडम, और जो ये शरीर है ना ये सर, इसको क्या हो जाता है, बाल नहीं रहते इसके ऊपर, गंजा हो जाता है व्यक्ति, पलितम मुंडम, ये जो पलित है ये मुंड, ये क्या हो जाता है, पूरा गंजा हो जाता है ना। अंगम गलितम पलितम मुंडम दस अनहवितम गतम तुंडम, उसके बाद हाथ में क्या जाता है, दांत नहीं रहते हैं, मुख में दांत नहीं रहते, पेट में हाथ नहीं रहती, है ना। वृद्धा यति गर्वता डंडम, और हाथ में क्या आ जाता है, एक डंडा आ जाता है, चलने के लिए बहुत दिक्कत होती है। लेकिन क्या बताते हैं शंकराचार्य, तदापि ना मुच्यन्ति आशा पिंडम, तब भी एक पिंड, एक आशा नहीं छूटती, क्या क्या आशा नहीं छूटती है, कि कब मैं पैसे वाला बनूंगा, कब मैं यशस्वी बनूंगा, सब लोग मेरा नाम पुकारेंगे, ये जो आशा पिंडम है ये छूटती नहीं है। क्या क्या हो जाता है, अंगम गलितम पलितम मुंडम दस अनवेतम गातम तुंडम वृद्धा यति गर्वत दंडम तदापि ना मुच्यन्ति आशा पिंडम, तब भी ये आशा आज जो पिंड है ये छूटता नहीं है। लेकिन शंकराचार्य कहते हैं व्यक्ति को क्या करना चाहिए, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते, मूढ़मते ये मूर्ख व्यक्ति, तो उनको इन सारी चीजों को त्याग कर क्या बोलना चाहिए, गोविंदा गोविंदा गोविंदा। तो इसी प्रकार से जब हम तिरुपति बालाजी जाएंगे, तो मैंने दर्शन तो नहीं किया, लेकिन मैंने सुना है काफी सारे प्रवचनों में कि बताते हैं कि वहां पर सब लोग गोविंदा गोविंदा बोलते हैं, है ना। तो हम भी कल या परसों जब भी हमें प्रभु जी हमारे को आज्ञा देंगे तो हम दर्शन कर पाएंगे, या फिर भगवान आज्ञा देंगे तो हम उनके दर्शन कर पाएंगे। तो हम लोगों को भी क्या बोलना चाहिए, गोविंदा गोविंदा गोविंदा। और जब इस प्रकार से हनुमान जी अनेक अनेक चीजों को तोड़ते हुए आगे जा रहे हैं, तो फिर वहां पर जब लंका में प्रवेश करने लगते हैं तो आखिरी में एक चीज आती है, एक राक्षसनी आती है जिसका नाम क्या था, ताड़िका। हाँ, जानते हैं उसका नाम, लंकनी। हाँ सॉरी, ताड़िका तो अंदर थी, हाँ लंकनी, राइट सॉरी। तो जो लंकनी थी वो गेट पर विराजमान थी, गेट पर हेड बनकर खड़ी हुई थी और जाने नहीं दिया। बोली, हे वानर, तुम अंदर कहाँ घुस रहे हो लंका के अंदर, मैं तुमको अंदर घुसने नहीं दूंगी, बिल्कुल भी घुसने नहीं दूंगी। तो हनुमान जी ने क्या किया, हनुमान जी ने इस हाथ से तो गदा पकड़ा हुआ था ऐसे करके, और ये जो उल्टा हाथ था इसका एक मुष्टिक प्रहार किया, धड़ाम ऐसे करके जैसे ही मारा तो क्या हुआ, लंकनी धड़ाम से नीचे गिर पड़ी, एक ही मुष्टिक प्रहार में, एक बार में, एक ही घुसे में नीचे गिर गई। जब गिरी तो उसने क्या बोला, उसने प्रणाम किया और बोली कि भगवान आपकी जय हो, भगवान आपकी जय हो, आप कौन है, अब तो लंका का विनाश अब चालू होने वाला है। तो उन्होंने कहा तुमको कैसे मालूम, तो बोले मुझे ब्रह्मा जी ने ताकत दी थी कि इस लंका में कोई प्रवेश नहीं कर सकता, मेरी तपस्या का ये फल था, लेकिन जिस दिन मैं किसी वानर के एक मुष्टिक प्रहार से अगर जमीन पर गिर जाऊं तो समझना कि उसके बाद लंका दहन होने वाला, लंका का नाश होने वाला है। तो अब लंका के नाश का आरंभ हो चुका है। तो अब ये लीला भगवान ने क्यों करी, तो इससे भी शिक्षा लेनी चाहिए कि जो ये लंकनी है ये और कुछ नहीं है, क्या है, हमारी मिथ्या अहंकार कि आई एम दिस बॉडी, मैं डायरेक्टर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं बॉस हूँ, मैं सीनियर हूँ, मैं जूनियर हूँ, ये सारी चीजें व्यक्ति को क्या करती हैं, लंकनी के समान अंदर भगवान की कथा को श्रवण करने के लिए श्रील प्रभुपाद जी जैसे हनुमान जी को अंदर एंटर नहीं करने देती। लंकनी क्या है, लंका क्या है, ये शरीर, और लंकनी क्या है, हमारा मिथ्या अहंकार। सीता जी क्या है, ये आत्मा, और इस शरीर की लंका में आज सीता जी बंद हो गई हैं, भगवान की सेवा में जा नहीं पा रही हैं। लेकिन क्या करना चाहिए, जिस प्रकार से हनुमान जी के मुष्टिक प्रहार से लंकनी नीचे गिर गई, ऐसे ही भक्त जब आते हैं तो वो जोर जोर से क्या बोलते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जब इस प्रकार से जोर जोर से भक्त कीर्तन करते हैं, हमने जैसे अनेक स्थान पे करना चाहिए था लेकिन नहीं किया, तो वो जब जोर से मुष्टिक प्रहार पड़ता है उस मिथ्या अहंकार पे, तो एक ना एक दिन वो जब लंकनी गिर जाएगी तो क्या होगा, लंका का नाश हो जाएगा, इस शरीर का नाश हो जाएगा, और जो आत्मा इस शरीर में बंद है सीता मैया, वो किससे जाकर मिलेंगी, भगवान राम से मिलेंगी, जो एक आत्मा का स्वरूप है, जीवेरे स्वरूप होए नित्यर कृष्ण दास, कृष्ण का दास बनना, भगवान के संग में रहना, वो तभी हो पाएगा जब ये इन प्रकार की चीजें हमारे जीवन से समाप्त हो पाएंगी। और भगवान के रामानुजाचार्य संप्रदाय में रामानुजाचार्य के एक बहुत सुंदर भक्त हुए जिनका नाम है कुरेश, वो कुरा देश के रहने वाले थे, है ना, और इसीलिए कारण उनको कुरेश बोलते थे, कुरा मतलब एक राज्य था और ईश्वर कुरेश, कुरा के जो ईश्वर थे वो उनका नाम था कुरेश, और उनकी पत्नी का नाम था अंडल, और जो ये थे अंडल और कुरेश ये दोनों ही रामानुजाचार्य के भक्त थे और साथ में बहुत ही ज्यादा बड़े पैसे वाले थे, है ना, कांचीपुरम में रहने वाले थे, कांचीपुरम राज्य के अंदर ये कुरा राज आता है और इसे कई बार कांची भी बोलते हैं। तो कांचीपुरम में रहने वाले जो कुरेश और अंडल थे ये दोनों बहुत ही ज्यादा धनवान थे, इनके पास बहुत लक्ष्मी थी, और क्या करते थे, डेली मॉर्निंग से लेकर जब सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक अपने घर का दरवाजा खोल के रखते थे और हर एक व्यक्ति की इच्छा पूर्ति करते थे, जो चाहो वो ले जाओ, है ना, ऐसे जैसे हमारे मिड डे मील का दरवाजा खुला रहता है हमेशा प्रसाद के लिए, जाओ चाहो ले जाओ, हरी बोल। तो जो ये कुरेश और अंडल थे, एक दिन इनको क्या हुआ, आकर एक भक्त ने बोला कि जो अपने जिस श्रीरंगम में जो श्री रंगनाथ स्वामी है और लक्ष्मी जी जो है पद्मावती लक्ष्मी कमल वाहिनी, वो क्या करना चाहती हैं, आपका दर्शन करना चाहती हैं, आपसे मिलना चाहती हैं, क्यों, आपसे बड़ी प्रसन्न है। लक्ष्मी जी उस व्यक्ति से बहुत प्रसन्न होती हैं जो व्यक्ति लक्ष्मी जी को अपने पास नहीं रखता, क्या करता है, आगे बांट देता है, है ना, और उस व्यक्ति से बड़ी दुखी होती हैं जो सोचता है ये तो मेरी है, छोड़ूंगा नहीं इसको, पकड़ के रखूंगा, ताले में रख दूंगा, लॉकर में रख दूंगा, 5 रुपए ना गिर जाए मेरे, जो इस प्रकार सोचता है उससे लक्ष्मी जी नाराज होती हैं, और लक्ष्मी जी नाराज होंगे तो कौन नाराज होगा, उनके पतिदेव विष्णु जी नाराज होंगे, और विष्णु जी नाराज हो गए तो फिर क्या होगा, हमारा जीवन बर्बाद हो जाए, खराब हो जाएगा, ये मनुष्य योनि हमारी बेकार चली जाएगी। तो इस प्रकार से लक्ष्मी जी उनसे मिलना चाहती थी कि उन्होंने बहुत सुंदर सेवा करी है, लेकिन जब कुरेश को और अंडल को पता चला कि लक्ष्मी जी हमसे मिलना चाहती है किस कारण से, कि हमारे पास क्या है, हम बहुत दान दक्षिणा देते हैं, तो उन्होंने कहा इस धन का क्या फायदा जिसके कारण लक्ष्मी जी इसलिए आ रही हैं क्योंकि हम बहुत धनवान हैं, इसलिए नहीं आ रही कि हम बहुत बड़े भक्त हैं, तो हमको क्या करना चाहिए, इसको त्याग कर देना चाहिए, लक्ष्मी को रखना नहीं चाहिए अपने पास में, बिल्कुल हमको क्या बनना चाहिए, एक भिकमंगा जैसा, भिखारी जैसा भक्त बन जाना चाहिए। और उन्होंने अपनी सारी लक्ष्मी को क्या किया, दान कर दिया। पूरे रंगम क्षेत्र में जो जितने भी लोग रहते थे उनको बोला जिसकी जो जरूरत है हमसे आकर ले जाओ। और कुरेश ने अपनी पत्नी को बोला कि चलो हम यहाँ से कहाँ जाएंगे, श्री रंगम कांचीपुरम से श्री रंगम क्षेत्र में जाकर रामानुजाचार्य जी के साथ जाकर रहेंगे। और दोनों निकल पड़ते हैं। और जब निकलते हैं रस्ते में तो क्या होता है, उनकी पत्नी बोलती है अंडल कि मुझे तकलीफ हो रही है, मुझे डर लग रहा है। तो बोलते हैं कुरेश किस कारण से तुम्हें डर लग रहा है, डरने की क्या बात है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, भगवान हमारे साथ हैं, हमारे गुरु की कृपा हमारे साथ है, फिर डरने की क्या बात है। तो कहते हैं, तो कुरेश समझ जाते हैं, बोलते हैं लगता है तुम किसी चीज को छुपा रही हो, तुम्हारे पास कुछ है। क्योंकि आचार्यगण बताते हैं कि हमें डर तभी लगता है जब हम किसी चीज को अपने पास संभाल के रखते हैं, उसके खो जाने की चिंता से हमें डर लगता है। अगर किसी के पास कुछ हो ही ना खोने के लिए तो डर लगेगा और निडर घूमेगा इधर से उधर, भैया लूट लो क्या लूटोगे, एक दो दी कुर्ता है लूट लो, लूटना है तो। इसलिए डरता वो व्यक्ति है जिसने संग्रह करके रखा हुआ है। इसलिए होलीनेस राधानाथ स्वामी बताते हैं कि व्यक्ति को भगवान ये नहीं देखते भगवान को क्या दिया, भगवान देखते हैं तुमने अपने पास क्या रखा। तुमने भगवान को क्या दिया ये इंपॉर्टेंट नहीं है, 10-10 रुपए निकाल के रंगनाथ स्वामी को दे दिए और अपने लिए क्या क्या रखा, 1-1 करोड़ रुपया, 1-1 लाख रुपया जो भी रखा आपने, है ना। तो भगवान ये नहीं देख रहे आपने भगवान को क्या दिया, भगवान ये देख रहे हैं आपने अपने लिए क्या बचा के रख लिया, है ना। उसी से आपको जीवन में डर रहता है, अरे मेरी चोरी ना हो जाए, घर पर क्या होगा, कल क्या होगा, ये डर इसी कारण है क्योंकि हम बहुत संग्रह करने की हमारी आदत है, है ना, हमको इसको त्यागना चाहिए, महाराज गण बताते हैं। तो उसी प्रकार से क्या हुआ, उनके पास पता चला कि अंडल ने एक सोने का आभूषण वाला पॉट घड़ा अपने पास संभाल के रखा था कि मैं अपने पति को इससे जल पिलाऊंगी। तो उन्होंने कहा इसको तुरंत ही कहाँ फेंक दो, कावेरी नदी में फेंक दो जिसमें आपने स्नान किया। और अंडल ने उठाकर उस पॉट को, उस मटके को, सोने के कावेरी नदी में फेंक दिया। और जैसे ही फेंका उसके बाद क्या हुआ, उनको डर लगना बंद हो गया। हरि बोल। तो ऐसे आपके जीवन में भी डर खत्म हो जाएगा अगर आप किसकी शरण गएंगे, अभय चरणारविंद श्रील प्रभुपाद जो कि भगवान के चरणों में रहते हैं वो निडर हैं, अब है क्योंकि उनको भय नहीं है, उनके पास कुछ भी नहीं है। शिला प्रभुपाद 40 रुपए लेके जा रहे हैं ना अमेरिका, इसलिए डर नहीं है। आप लोग 40,000 लेके जाते हैं इसलिए आपको डर होता है मेरा क्या होगा कल कोई मुझसे लूट ना ले, है ना। इसलिए प्रभुपाद जी को डर नहीं है, भक्त को इसलिए डर नहीं होता क्योंकि उसके पास एकमात्र चीज होती है क्या, कृष्ण का संग उसके पास होता है, साधुओं की कृपा उसके पास होती है और उसके पास कोई धन नहीं होता। सबसे बड़ा धन होता है हरि नाम का धन, है ना। तो इसी को लेके भक्त को आगे चलना चाहिए। और फिर कुरेश और अंडल जब पहुंचते हैं कहां, श्रीरंगम क्षेत्र में, तो श्री वहां पर जाकर क्या होता है, वो मांगते नहीं है, क्या करते हैं कि जो भी कोई दान दे जाए आकर ना, चावल दे दिया, किसी ने प्रसाद दे दिया रंगनाथ स्वामी का, बस उसी को प्रसादी को पाकर वो जीवन जीते थे। एक दिन क्या हुआ, हम जिस जगह हमने प्रसाद पाया, प्रभु जी मुरारी चेतन प्रभु जी हमको लेके गए थे, जो श्री वैष्णव संप्रदाय का घर था, बताते हैं कि जो पहला गेट, हमने दो गेट क्रॉस करे थे, पहला गेट जो है उसी के आसपास, मुझे एग्जैक्ट मालूम नहीं कौन से द्वार, दक्षिण द्वार या पूर्वी द्वार, उस पर कुरेश का घर था, है ना। तो मैंने भक्तों से पूछा भी वहां पर, लेकिन उनको आइडिया नहीं था कि एग्जैक्ट प्लेस कौन सा है। तो वो जो कुरेश थे वो वहीं रहते थे और बिल्कुल उनको रंगनाथ स्वामी का जब ऑफरिंग होता था, भोग लगता था, उसकी घंटी की आवाज़ भी सुनाई देती थी। तो ये 3-4 दिन तक भगवान का कोई प्रसाद किसी ने इनको दिया नहीं। तो उन पत्नी ने देखा कि उनके पति के भूख लग रही है ना, तो उसके कारण वो ये नहीं कर रहे हैं कि मुझे दे दो या ये दे दो वो दे दो, मांग नहीं रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, पेट के बल लेट गए जमीन पर और अपने पेट को दबा रहे हैं, क्योंकि जब पेट दबता है ना तो भूख लगनी बंद हो जाती है, है ना। तो इस प्रकार से अपने पेट को दबा रहे हैं कि मुझे भूख ना लगे, मैं क्या कर सकूं, बस भगवान के नामों का उच्चारण कर सकूं, क्या बोलूं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अपने पेट को दबा रहे हैं। लेकिन हम लोग तो क्या बोलते हैं, अरे पहले पेट पूजा फिर बाद में काम दूजा। लेकिन जो अच्छा भक्त है, सच्चा भक्त है, उसके लिए हरिनाम धन इंपॉर्टेंट है, हरिनाम का प्रसाद इंपॉर्टेंट है। लेकिन ऐसे स्टेटस पे आने में बहुत वक्त लगता है क्योंकि वो आत्मा किस स्तर की चीज़ है। हमारे जैसे अभी पतित भक्तों के लिए, आप जैसे नहीं लेकिन मेरे जैसे पतित भक्तों के लिए बहुत मुश्किल है उस स्टेटस पे सोचना। अभी तो हम प्रसाद ग्रहण कर ही भगवान का नाम लें, वो भी हमारे लिए ठीक है। तो इस प्रकार से कुरेश और अंडल क्या करते हैं, बहुत दोनों पेट के बल लेट जाते हैं और उनको घंटी की आवाज़ें सुनाई देती हैं कि रंगनाथ स्वामी को भोग लग रहा है, ओम नमो नारायण, उनको भोग लग रहा है। तो उनको भूख लग रहा है, तो घंटी की आवाज सुनकर अंडल के मन में क्या आता है, थोड़ा थोड़ा स्त्री होती है ना तो वो सॉफ्ट होती है, तो उसके मन में आता है कि अरे काश ये भगवान का जो राजभोग लग रहा है ये मेरे पति देव को मिल जाए। बस इतनी सी इच्छा उत्पन्न होती है, पांच मिनट बाद ही, थोड़ी देर बाद, पांच दस मिनट बाद घंटी बजती है उनके घर की, छन छन टंग टंग। और जब वो गेट खोलते हैं तो देखते हैं कि जो श्री वैष्णव परिवार के सबसे महान पुजारी हैं, हेड पुजारी, वो क्या लेकर आए हैं, पूरी 56 भोग की प्लेट जो कि रंग पर हुई है, उसमें काफी 25 टाइप्स के राइस है उसमें, और चपाती भी है और मालपुआ है, बहुत सारी चीजें लेकर वो आते हैं उनके घर में और कहते हैं कि आपके लिए भगवान की तरफ से ये प्रसाद है, क्योंकि रोज उनको प्रसाद मिलता था लेकिन पांच दिन से मिला नहीं था, तो इस बार वो पूरी थाली लेकर आते हैं। तो जब वो थाली आती है तो देखते ही कुरेश समझ जाते हैं कि किसी ने तो इच्छा प्रकट करी है कि भगवान की ऑफरिंग हमको मिल जाए। तो फिर वो अपनी पत्नी से पूछते हैं, अंडल तुमने ऐसी क्या कोई इच्छा करी कि भगवान का राजभोग मुझे प्राप्त हो जाए? तो कहती हैं कि हाँ, मैं आपको तड़पते हुए नहीं देख पा रही थी भूख के कारण, इसलिए मैंने भगवान से प्रार्थना करी कि आज जो उनका राजभोग है अगर उसका कुछ अंश हमें मिल जाए, मैंने 56 भोग नहीं मांगा था लेकिन ये मांगा बस रंगनाथ स्वामी का कुछ प्रसाद हमको मिल जाए तो मेरे पति देव का तड़पना बंद होगा, फिर हम दोनों क्या कर पाएंगे, भगवान का इत्मीनान होकर भजन कर पाएंगे। तो इस प्रकार से बोला तो बोले कि ये देखो, भगवान को सेवा में नहीं लगाना चाहिए, हमें भगवान की सेवा में लगना चाहिए, लेकिन अभी हम लोग क्या करते हैं, भगवान के आगे, भगवान ये मुराद पूरी कर दो, बच्चों को बड़ा कर दो, उनको नौकरी लगा दो, शादी करा दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, हम बहुत विभिन्न प्रकार की चीजें भगवान को बोलते हैं। अगर भगवान ये सब करने लगेंगे तो वो कौन हो गए, नौकर या स्वामी? नौकर हुए ना, नौकर को बोलते हैं ना, अरे काम करो, वहां से ग्लास उठाओ, वहां रख दो, अब पोछा लगा दो, झाग खिड़कियां बंद कर दो, जाले हटा दो, ये नौकर को आदेश देते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो आप कितना सुंदर यहाँ पर तरीके से भगवान के हर नाम के पीछे क्या लगाया गया है, स्वामी, श्री रंगनाथ स्वामी, श्री रामनाथ स्वामी। स्वामी मीन्स कि वो व्यक्ति हमारे लिए स्वामी है, हम उसको आदेश नहीं दे सकते हैं, अगर उसकी कृपा होगी तो कुछ बचा कुचा हमारी तरफ फेंक देगा, और फेंक दिया तो समझो आपके जीवन पार हो गया, होगा कि नहीं होगा। तो उसकी कृपा की प्राप्ति के लिए आपको बोलना चाहिए कि जो इच्छा हो आपको, जैसा अच्छा हमारे लिए समझे वो हमको दीजिए, हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे। इस प्रकार से प्रार्थना वो उन्होंने समझाया अपनी पत्नी को और बोला भगवान को सेवा में नहीं लगाना है, हमें भगवान की सेवा में लगना है। लेकिन अब प्रसाद उनको आ चुका था तो प्रसाद को ऑनर करना था, उसकी रिस्पेक्ट करनी थी, उसको आदर देना था, तो दोनों ने मिलकर क्या किया, उस प्रसाद को ग्रहण किया। और प्रसाद को ग्रहण करने से उनके घर में दो पुत्रों की प्राप्ति हुई उनको, एक थे पराशर भट्ट जिनके बारे में आपने सुना, और एक थे कौन, व्यास भट्ट, जो कि दूसरे पुत्र थे। और ये दोनों जब रामानुजाचार्य को पता चला कि राजभोग खाने के कारण इनके घर में इतने सुंदर भक्त हैं, इनके घर में दो पुत्रों की उत्पत्ति हुई है, तो रामानुजाचार्य, बताया जाता है कि स्वयं उन दोनों पुत्रों को ले जाकर रंगनाथ स्वामी के ऑल्टर में रख देते थे, लेफ्ट एंड राइट, थोड़े से इधर थोड़े से इधर, और जो लोग दर्शन करते थे वो साथ में दो भक्तों का भी दर्शन करते थे, जिनकी उम्र क्या है अभी 15 दिन और एक की, मतलब एक महीना, मतलब इस प्रकार छोड़, 15 दिन और एक महीना, या एक साल, सॉरी, एक साल और 15 दिन, एक साल का डिफरेंस है। तो दोनों भाइयों को दोनों अल्टर में रख दिया, छोटे छोटे बच्चे हैं और भक्त आकर उनका दर्शन कर रहे हैं दोनों का, सोच रहे हैं कौन है जिनको रंगनाथ स्वामी का, एक को मुखारविंद मिल गया, एक को चरण मिल गए, और दोनों को स्थान मिल गया रंगनाथ स्वामी की सेवा करने का। तो चरण किसको मिला, पराशर भट्ट को, और मुखारविंद मिला व्यास भट्ट को, बताया गया है। तो इस प्रकार से दोनों भगवान की सेवा में सदा लगे रहते थे, और भगवान का जो प्रसाद होता था, रामानुजाचार्य अपने हाथ से उन दोनों भक्तों को क्या करते थे, प्रसाद खिलाते थे। सोचिए कि एक पवित्र परिवार में जन्म लेने के कारण कितनी कृपा मिलती है, भगवान की सेवा करने का मौका मिलता है, भगवान के धाम में जाने का मौका मिलता है। तो इस प्रकार से व्यक्ति को भक्ति से घबराना नहीं चाहिए। मान लीजिए अगर दोबारा जन्म भी मिला तो क्या मिलेगा, भक्त के परिवार में मिलेगा, है ना, क्योंकि भौतिक जीवन 1 से शुरू कर 50 पे समाप्त हो जाता है, लेकिन भक्ति, और फिर क्या होता है, जब दूसरा जन्म होता है तो दोबारा 1 से शुरू करना पड़ता है, लेकिन भक्ति में 1 से शुरू कर अगर 50 पे समाप्त भी हो गया तो अगला जीवन 51 से शुरू होगा, है ना। तो ये चिंतित नहीं होना चाहिए भक्त को, है ना, भगवत गीता कहती है, ना यह अभिक्रम नाश अस्ति प्रत्वायो न विद्यते सुअल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। अगर हम अल्प मतलब थोड़ा, और सुअल्प मतलब थोड़े से भी थोड़ा अगर भगवान की सेवा करेंगे, भगवान के नामों का उच्चारण करेंगे, तो हमको क्या होगा, भगवान महान भय से तार देंगे, इस मृत्यु रूपी संसार से निकाल कर किसी भक्त के परिवार में हमको डालेंगे, ताकि बचपन से हमको क्या सुनने को मिले, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम, राम राम हरे हरे। तो इसी प्रकार से दोनों भक्त दोनों बड़े होने लग गए और उन दोनों को बहुत राजभोग प्राप्त होता था। और जो ये पराशर भक्त थे, ये जब 5 वर्ष के थे तो रंगनाथ क्षेत्र में श्रीरंगम में एक महान दिग्विजय पंडित आते हैं और वो बोलते हैं सारे के सारे लोग ये बहुत ज्ञानी हैं, इन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया है, इनको सारे भागवत पुराण भगवत गीता और अनंत कोटि पुराणों का अत्यधिक ज्ञान है, कोई भी इनको हरा नहीं सका, इसलिए इनका झंडा ऊंचा है ना, ये दिग्विजय पंडित हैं। तो जब ये 5 वर्ष के कौन होते हैं पराशर भट्ट जो कुरेश के पुत्र थे, वो जाकर उनकी पालकी को रोकते हैं और हाथ में कुछ रेत की रेत ले लेते हैं ना समुद्र के किनारे से, और ले जाकर अपनी मुट्ठी 5 वर्ष के छोटी सी मुट्ठी दिखाकर बोलते हैं, मैंने सुना है कि आप दिग्विजय हैं, आप सर्व ज्ञाता हैं, तो आप मेरे को बताइए कि मेरी मुट्ठी में मिट्टी के कितने कण हैं। तो वो चुप हो जाते हैं, बोले अगर आप सर्व ज्ञाता हैं, अगर आपको सब कुछ मालूम है तो बताइए मेरी मुट्ठी में कितने बालू के कण हैं। तो वो कुछ जवाब नहीं दे पाते। जब कुछ जवाब नहीं देते तो क्या करते हैं, अपनी पालकी से उतरते हैं और उस बच्चे को प्रणाम करते हैं, कहते हैं तुम फिलॉसफी को सही से समझ गए, सर्वज्ञाता कोई नहीं हो सकता, कौन हो सकता है, केवल कृष्ण है ना, ईश्वर खाली केवल भगवान सब कुछ ज्ञाता हो सकते हैं। इंजीनियर को इंजीनियरिंग के बारे में मालूम है, डॉक्टर को डॉक्टरी के बारे में मालूम है, लेकिन भगवान को डॉक्टर के बारे में भी मालूम है और इंजीनियर के बारे में भी मालूम है ना। तो इसी प्रकार से भगवान से कभी कोई व्यक्ति सर्वज्ञाता नहीं हो सकता, वो हमेशा भगवान का दास हो सकता है ना, और हमें ये चीजें समझनी चाहिए। तो इस प्रकार से बचपन में 5 वर्ष की उम्र में ही पराशर भट्ट ने क्या किया, इतने बड़े दिग्विजय पंडित को हरा दिया। तो इस प्रकार से अनेकों अनेकों आचार्य गणों की लीलाएं हैं जिनसे हमको सीखना चाहिए। और एक लीला का और हम श्रवण कर सकते हैं अगर हमारे पास समय हो, अन्यथा हम समाप्त कर सकते हैं, प्रभु जी जैसे आदेश करेंगे कर सकते हैं ना, ठीक है। तो आता है कि एक और रामानुजाचार्य के बहुत सुंदर भक्त हुए हैं जिनका नाम था धनुर्दास। धनुर्दास जो थे ये क्या कर रहे थे, एक बार भगवान की पालकी निकल रही थी, जैसे आपने देखा जब हम रंगनाथ स्वामी के दर्शन करने गए तो स्टार्टिंग में ही राम मूर्ति को यहाँ ले जाया जा रहा था, तिरुपति ले जाया जा रहा था, हाँ, और उनको पालकी ले जाई जा रही थी। इस प्रकार से पालकी निकल रही थी और सारे के सारे भक्त जोर जोर से भगवान का जय जयकार कर रहे थे, क्या बोल रहे थे, श्री रंगनाथ स्वामी की जय, श्री रंगनाथ स्वामी की, श्री रंगनाथ स्वामी की, ऐसे बोलते हुए जा रहे थे। तो जो ये धनुर्दास थे इनका मन भगवान के विग्रह को देखने की बजाय एक स्त्री हिमांगी नाम की एक स्त्री के ऊपर अटक गया और उसकी सुंदरता को निहार रहे थे, ध्यान पूर्वक देख रहे थे और बिल्कुल भी भगवान की तरफ इनका ध्यान नहीं था। तो जो रामानुजाचार्य थे उन्होंने देखा कि ये देखो कैसा मूर्ख व्यक्ति है, क्या कर रहा है, भगवान के विग्रह को निहारने की बजाय किसी स्त्री की तरफ ध्यान दे रहा है, स्त्री को देख रहा है ध्यान पूर्वक। तो रामानुजाचार्य जी ने बोला कि जाओ अपने एक भक्त को और बुला के लाओ, इसको धनुर्दास को बुला के लाओ मेरे पास में। तो वो इतना मग्न था कि उन्होंने बोला हरि बोल, आपको वो हम बुला रहे हैं, तो उसने इग्नोर कर दिया, वो अपने ध्यान मग्न था उस स्त्री को देखने में। फिर उन्होंने भक्त ने बोला हरि बोल, आपको महान आचार्य रामानुजाचार्य बुला रहे हैं, फिर उसने ध्यान नहीं दिया वो, क्योंकि वो अपनी समाधि में था, ट्रांसेंडेंटल में नहीं था, भौतिक समाधि में था, स्त्री के रूप को निहारता रहा। और वो स्त्री भी एक बहुत बड़ा छाता लेकर खड़ी हुई थी और उसको देखता रहा, काफी देर तक देखता रहा। तब इनको बहुत गुस्सा आया, रामानुजाचार्य ने बोला कि जोर से पुकारो इसके कान पर कि तुम्हें बुला रहे हैं। तो उन्होंने जोर से बोला हरि बोल, तुमको बुला रहे हैं। तो इस प्रकार से जब 2-3 बार उन्होंने जोर जोर से बोला तब उसकी समाधि टूटी, और समाधि टूटने के बाद क्या हुआ, वो तुरंत ही उनके बोला कि हाँ बोलिए क्या कार्य है। तो जिस प्रकार से आप बताते हैं कि एक व्यक्ति जो होता है उसको क्या करना चाहिए, जब कोई भान आचार्य बुलाए तो उनकी तुरंत उनकी वाणी को समझना चाहिए, उनको सुनना चाहिए, साधुओं की वाणी को समझना चाहिए, उसको ग्रहण करना चाहिए। तो वो धनुर्दास तुरंत ही चले जाते हैं, कहाँ जाते हैं, उनके पास में, और बोलते हैं हाँ जी बताइए मेरे लिए क्या आदेश है। तो कहते हैं तुम इस स्त्री में क्या देख रहे हो, तो बोलते हैं इसकी सुंदरता। कह रहे तुम्हारी पत्नी है, कह रहे नहीं मैं इसको अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। कह रहे हैं अगर मैं तुमको इससे भी सुंदर वस्तु दिखाऊं तो क्या तुम इस स्त्री को त्याग सकते हो। तो धनुर्दास कहते हैं कि नहीं, इस स्त्री से सुंदर इस विश्व में कुछ भी नहीं हो सकता, ये कौन है, विश्व सुंदरी है। तो वो रामानुजाचार्य कहते हैं कि ठीक है, आज शाम को गोरा आरती के बाद तुम मुझसे मिलना, शाम की संध्या आरती के बाद, और मैं क्या करूंगा, तुम्हारे को एक ऐसी सुंदर वस्तु का दर्शन कराऊंगा जिसको देखने के बाद तुम्हें संसार की किसी भी वस्तु की सुंदरता फीकी लगने लगेगी। और फिर रामानुजाचार्य उनका स्वयं हाथ पकड़कर धनुर्दास का कहां ले जाते हैं, उनको अंदर ले जाते हैं और किसका दर्शन कराते हैं, श्री रंगनाथ स्वामी का दर्शन कराते हैं। और उनका एक बार दर्शन करने के बाद धनुर्दास की आंखों से आंसू अश्रुधारा बहने लगती है, आंसू निकलने लगते हैं, वो फूट फूट के रोने लगता है कि मैंने अपने जीवन में अभी तक क्या क्या चीजों के ऊपर ध्यान दिया और रंगनाथ स्वामी की सुंदर विग्रह पर मैं ध्यान नहीं दे पाया। और उनके मुखारविंद को देखते ही वो बेहोश होकर गिर जाता है जमीन पे और सारे भक्त उसको उठाते हैं, उसको आचमन कराते हैं कावेरी नदी के जल से, उसके आचमन कराते हैं, वो फिर उठता है और फिर वापस आकर क्या कहता है कि मैं बस आप ही के साथ अपना जीवन गुजारना चाहता हूँ, आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। तो रामानुजाचार्य कहते हैं देखो ग्रस्त जीवन पालन करना गलत बात नहीं है, हमें लगता है ना ब्रह्मचारी बनना इंपॉर्टेंट है, अगर कोई ब्रह्मचारी हो तो वो महान भक्त हो सकता है, कोई ग्रस्त हो तो क्या हो सकता है, वो महान भक्त नहीं हो सकता है ना, ऐसा नहीं है। अगर ग्रस्त भी हो लेकिन अगर वो भगवान के प्रति केंद्रित है, जैसे शिला प्रभुपाद ने बताया कि हमें अपने घर को भवन बनाना चाहिए, भवन का मतलब है भगवान का घर, भगवान जहां पर विराजमान रहते हैं तभी उसके भवन बोलते हैं, भगवान का घर। लेकिन अगर उसमें भगवान केंद्रित ना रहे और अनेक चीजें केंद्रित रहे, प्रसाद है मेरे लिए ये जीवन में मतलब खाना है, कपड़े हैं, पैसा है, स्त्री है, बच्चे हैं, एजुकेशन है, ये सारी चीजें अगर केंद्र हैं तो फिर क्या होगा, वो वन बन जाएगा और वन में कौन रहते हैं, जंगली जानवर, और उनके कारण ही सभी घरों में कलेश रहता है क्योंकि भगवान के केंद्र पर कोई ध्यान नहीं देता है। प्रयास करना चाहिए ग्रस्त जीवन में कि हम अपने घर को क्या बनाए, भवन बनाए, भगवान का केंद्र बिंदु। उनको वो समझाते हैं कि अपने जीवन में कृष्ण रंगनाथ स्वामी को केंद्र बनाओ और तुम ग्रस्त जीवन का पालन करो क्योंकि तुम उस स्त्री के प्रति आकर्षित हो, अगर तुम ब्रह्मचारी बनोगे तो एक ना एक दिन तुम फिर वापस भगवान की सेवा छोड़कर जा सकते हो, इसलिए क्या करो तुम उस स्त्री से विवाह करो। तो फिर वो हिमांगी से विवाह कर लेते हैं, हिमांगी और धनुर्दास साथ में रहने लगते हैं। और बताते हैं कि रामानुजाचार्य जब जाते थे कावेरी स्नान करने के लिए तो जाते वक्त वो अपने ब्रह्मचारी भक्त का हाथ पकड़ के जाते थे, लेकिन जब स्नान करने के बाद पवित्र हो जाते थे तो फिर वो धनुर्दास का हाथ पकड़कर मंदिर तक वापस आते थे। तो सारे ब्रह्मचारी बोलते थे कि हे रामानुजाचार्य आप कहां महासन्यासी हैं, आपने 700 से ज्यादा सन्यासी शिष्यों को दीक्षा दी है और आप एक ऐसे ग्रस्त व्यक्ति जो कि पतित है, स्त्री के प्रति आकर्षित है, आसक्त है, उसका हाथ पकड़कर आप कावेरी नदी के पवित्र जल में स्नान करने के बाद वापिस आते हैं, तो आप इसको त्याग दीजिए, इसका हाथ मत पकड़िए। तो फिर इस चीज को समझाने के लिए वो एक लीला करते हैं, रामानुजाचार्य क्या करते हैं, सारे के सारे ब्रह्मचारी जो होते हैं उनकी लंगोटी और उनके जो वस्त्र होते हैं कोपीन, उसको क्या करते हैं, अपने हाथ से जाकर रात्रि में काट देते हैं, फाड़ देते हैं। और सुबह जब सारे के सारे ब्रह्मचारी देखते हैं कि उनके क्या हुआ, कपड़े वस्त्र फट गए हैं, तो सारे एक दूसरे को कहते हैं, लड़ाई करने लगते हैं, झगड़ा करने लगते हैं, तुमने मेरे वस्त्र फाड़ दिए, तुमने मेरे वस्त्र फाड़ दिए, तुमने मेरे फाड़ दिए, लड़ाई होने लगती है। तो कहते हैं ठीक है लड़ो मत, लड़ो मत। रामानुजाचार्य उनको समझाते रहते हैं लेकिन वो लोग क्या करें, लड़ते रहते हैं आपस में। और फिर वो कहते हैं कि ठीक है तुम एक काम करो कि कुछ धन की जरूरत है, अभी हमारे पास धन नहीं है, कुछ धन ले आओ, फिर हम क्या करेंगे, तुम्हारे लिए वस्त्र खरीदेंगे, अनेक वस्तु भगवान के विग्रह के लिए खरीदेंगे। तो कुछ ब्रह्मचारी शिष्यों को बोलते हैं कि जाओ, कहां जाओ, तुम लोग जाओ धनुर्दास के घर में और मैं उसको अपनी सेवा में, रात्रि सेवा में बुला लूंगा और उसकी स्त्री जो है हिमांगी वो घर में अकेली होगी और तुम जाना और क्या करना, उनके घर में चोरी करना। आदेश दे रहे हैं गुरु कि तुम चोरी करना और चोरी करके ले आना सारे के सारी चीजें, आभूषण, और फिर क्या करेंगे, फिर तुमको समझ में आएगा कि मैं क्यों कावेरी नदी से वापिस आते वक्त धनुर्दास का हाथ पकड़ता हूँ। तो रात शाम को धनुर्दास सेवा करने के लिए रामानुजाचार्य को प्रणाम करने आते हैं तो रामानुजाचार्य कहते हैं कि धनुर्दास तुम आज मेरे पांव दबाने की सेवा करो रात्रि में और फिर कुछ देर बाद जब मुझे विश्राम के लिए मैं चला जाऊं तब तुम अपने घर चले जाना। और इशारा करते हैं ब्रह्मचारियों को कि तुम चले जाओ कहां, इनके घर पे चले जाओ। तो ब्रह्मचारी उनके घर जाते हैं और फिर क्या करते हैं, देखते हैं कि उनकी पत्नी इंतजार करते करते सो गई है और उनके कानों में कुंडल है, हाथों में आभूषण है। तो खिड़की से ब्रह्मचारी भक्त कूदते हैं उनके घर में और जाकर क्या करते हैं, उनके आभूषणों को निकालते हैं। तो जब निकालना शुरू करते हैं कुंडल और हाथ से कंगन, ये सारी चीजें निकाल रहे होते हैं तो उनकी पत्नी समझ जाती है, क्योंकि वो भी बहुत महान भक्त हो गई थी भगवान के भक्तों का संग कर करके, तो समझती हैं कि इनको मेरे आभूषणों की आवश्यकता है। तो जैसे ही करवट बदलती है कि भाई एक साइड का मत लो, दोनों साइड का ले लो, तो जैसे ही करवट होती है, हलचल होती है, तो भक्त डर जाते हैं और सोचते हैं कि मैं पकड़ा जाऊंगा, है ना। तो सारे के सारे भक्त खिड़की से कूद के वापिस आ जाते हैं। तो इतने में धनुर्दास को इशारा किया जाता है कि तुम जाओ अपने घर जाओ, बहुत रात्रि हो गई है। तो धनुर्दास जब अपने घर जाते हैं तो फिर ब्रह्मचारी भक्तों को भेजा जाता है कि जाओ देख के आओ खिड़की में कि इनके घर में क्या प्रक्रिया हो रही है चोरी को लेकर। तो वे वो जाते हैं तो देखते हैं, पत्नी बोलती है कि कुछ भक्त आए थे, मेरे कानों से कुंडल उतार रहे थे, मेरे हाथों से कंगन निकाल रहे थे, मैं चाहती थी कि वो दूसरी साइड का भी ले लें, तो जैसे ही मैंने करवट ली मेरी हलचल देखकर वो भक्त भाग गए। तो जो धनुर्दास थे बहुत नाराज होते हैं, वो कहते हैं तुम कैसी स्त्री हो, कैसी सेवक हो, तुमने भगवान के भक्तों की सेवा नहीं करी, तुमको इतने सॉफ्टली टर्न होना चाहिए था, इतने आराम से टर्न होना चाहिए था कि वो दोनों कानों के कुंडल उतार सकते, तुमने अपने गुरु की अपने रंगनाथ स्वामी की सेवा करने में क्या करी है, त्रुटि करी है, उसको सही तरीके से नहीं किया है, तो अगली बार जब ऐसी सेवा का मौका मिले तो ऐसी त्रुटि मत करना। तब जब वो ब्रह्मचारी ये देखते हैं आकर रामानुजाचार्य को पूरा वृतांत सुनाते हैं, तो रामानुजाचार्य कहते हैं समझे किस कारण से तुम्हारे पास कोपीन है जो कि तुम्हें मंदिर से फ्री में मिल रही है, उसकी फटने पर तुम्हारे अंदर लड़ाई हो रही है, और वो धनुर्दास जो अपनी मेहनत से कमा कर लेके आ रहा है उसकी चोरी हो जाने पर और मालूम पड़ने पर कि किसने चोरी करी है, उसके बाद भी वो क्या कर रहे हैं, भगवान की सेवा समझ रहे हैं। इसलिए ग्रस्त जीवन में रहते हुए भी कोई भी भगवान का महान भक्त बन सकता है, ये व्यक्ति को समझना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी से, श्रील प्रभुपाद स्वयं में ग्रस्त है और उन्होंने इतने बड़े केंद्र इस्कॉन की स्थापना करी है, तो हम भी अपने ग्रस्त परिवारों के साथ यहाँ पर आए हैं तो अपनी केंद्र बिंदु सिर्फ क्या बनाएं, रंगनाथ स्वामी, श्री रामनाथ स्वामी, है ना, और अपने मिथ्या अहंकार अनेक चीजों को त्याग कर बस एक ही चीजों का, एक ही भगवान के नामों का उच्चारण करें, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसे भगवान के भक्तों की अनेकों लीलाएं हैं, लेकिन अभी समय कम है क्योंकि सब लोग प्रसाद का इंतजार कर रहे हैं, तो अभी हम तिरुपति में जाकर और भी महान आचार्यों की चर्चा कर सकते हैं, काफी सारे आचार्यगण हैं, तो अभी हम यहीं समाप्त करेंगे, विराम देंगे। हरे कृष्ण।
हरे जी, बहुत ही जोरदार स्वागत करेंगे। इन्होंने इतने सुंदर ढंग से जो हमें भगवान की लीला में बताया, बहुत ही सुंदर वर्णन।